श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 33। किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखम् लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। बहुत सुंदर श्लोक है। पहली बात तो आप इसको, इसमें एक न्याय है, इसे कहते हैं कैमुत्ति न्याय, अर्थात जब जैसे कैमुत्ति न्याय का अर्थ होता है, अगर मान लीजिए किसी के पास 10 रुपये है तो वो 1 रुपये की चीज खरीद सकता है, तो जिसके पास 100 रुपये है तो वो भी 1 रुपये की चीज तो खरीद ही सकता है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, इसका उपयोग बहुत बार होता है, तो यहाँ बता रहे हैं भगवान की कोई बहुत निम्न जाति का हो या बहुत आसक्त हो, वो भी जब भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है अनन्य रूप से भगवान कृष्ण के शरण ले करके, तो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, भक्त मतलब सदाचारी पुरुष हैं, वो अगर कृष्ण की शरण प्राप्त कर ले तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। और दूसरी लाइन बड़ा अच्छा बता रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत जो है अनित्य है। अगर हम भौतिक संसाधनों से युक्त हैं भी और हमें लग रहा है कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों को काट लेते हैं, सक्षम है, फिर भी अंततोगत्वा मृत्यु तो आएगी ही और सब कुछ हमसे छीन के लेके जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कि करना क्या है इस जगत पर रहते हुए। उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण का भजन करें और अनन्यता से भजन करते करते भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएं। ये है इसका अर्थ। तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति अगर वृद्ध होता है तो उसको उतना ही कष्ट होता है जितना कि एक गरीब व्यक्ति को वृद्ध होने में कष्ट होता है। उसमें अंतर नहीं पड़ता है कि अगर कोई व्यक्ति धनी है तो वृद्ध होने में उसे कम कष्ट होगा। यहां स्पष्ट कहा गया है अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। यहां पे हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता हो, हर प्रकार का क्लेश हो, ऐसा स्थान हमारे रहने लायक हो भी कैसे सकता है। वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति को इस जगत में कोई करियर बनाने की आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए। जितना जीवन निर्वाह करने के लिए आवश्यक हो उतना धन कमाए और उसके बाद उसका उपयोग भगवान कृष्ण की भक्ति में करते हुए, अपने बाकी समय का उपयोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाते हुए भगवान के धाम जाने की तैयारी करें, यही इस जीवन का उद्देश्य है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे ये बहुत नहीं भगवान डिस्कस कर रहे हैं कि तुम जगत में आए कैसे, फोकस इस बात पे है कि भगवान के धाम पहुँचे कैसे, कैसे आए, कब आए, इस पर चिंता करने की बजाय कैसे भगवान के पास पहुँचे हैं, इसको भगवान यहाँ पे इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं। और वो है भगवान का भजन, अनन्य भजन। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, किंतु भगवद गीता से हम ये जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है, अर्थात ये हमेशा रहने वाला नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संसार है ही नहीं, इस समय ये संसार है और हम इससे आसक्त भी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि संसार झूठा है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है, यानी भगवान श्री कृष्ण का धाम। यह संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। अभी तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि हमारे जीवन में हम लोग दुख के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अगर कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट ना आए तो भी व्यक्ति व्यथित हो जाता है। किसी दिन अगर शांति से जीवन बीत जाए तो व्यक्ति को बड़ी दिक्कत होती है कि आज जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। भगवान नहीं चाहते कि हम लोग इस जगत में सड़ते रहें, और वस्तुतः हमारा शरीर हर क्षण सड़ ही रहा है। इसको स्थायित्व देने के लिए व्यक्ति को स्नान कराना पड़ता है, मल साफ करना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो स्थिति हमारी अच्छी है नहीं, और भगवान भी करुणावश इसी बात को बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे परमानेंट रहने का प्रयास मत करो, ये जगत ही परमानेंट नहीं है। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए जिससे वह सदैव सुखी रहे। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। इस जगत में सभी की एक ही प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तीन प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। और जब तक हम इनका सोल्यूशन नहीं करते हैं हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ये हर प्रकार से क्लेश को निवारण कर देगी और हमें भगवान के धाम जाने के योग्य बनाएगी। तो इस सब ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो अगर हम सदाचारी हो गए हैं, भगवान की भक्ति करने लगे हैं, अच्छे से कर रहे हैं भक्ति, तो फिर तो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएंगे, इसमें क्या संदेह करना है। भगवान यहाँ स्पष्ट बोल रहे हैं। तो इसलिए हमारा फोकस बार बार यही होना चाहिए कि अपने दोषों को और अपनी गलतियों पर ध्यान ना दे करके, अपितु भगवान कृष्ण की भक्ति हम कैसे अनन्य भाव से कर सकते हैं इस पे ध्यान दें। इसके द्वारा व्यक्ति ठीक हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो बीमारी के बारे में सोचने से वो ठीक नहीं हो जाएगा, अपितु भगवान दवा लेने से अपने आप बीमारी चली जाएगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का भजन, और वो भजन अनन्य होना चाहिए, ये उस पर हम फोकस करें तो फिर अपने आप ही सारे जो सद्गुण हैं जो कि आत्मा के स्वरूप में हैं वो प्रकट होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा।